पृष्ठ संख्या 40। तुम अपने आप में विष वृक्ष के समान दुर्गुण के फलों से भरे हुए हो और स्वयं के दुर्गुणों का दोष औरतों के माथे पर डालते हो। यही आश्चर्य की बात है। एक बार बुराई की आदत हुई तो मनुष्य किसी भी सीमा तक जा सकता है। बस उसे वह सुख मिलना चाहिए। इसमें फिर क्या पुरुष और क्या स्त्री, एक झूठ के लिए 100 झूठ, शराब पीना, जुआ खेलना आदि अवगुण स्त्रियों में देखे हैं कभी? स्त्री चरित नामक किताब में स्त्रियों के साहस के बारे में किसी पुरुष ने लिखा है, वह कितना सच है इसका प्रमाण कहीं नहीं है। महलों में रहने वाली स्त्रियां कितने कड़े पहरे में रहती हैं, रात में चाहे पुरुष वेश में ही सही, राजमहल के बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। पहरेदार से बच निकलना क्या आसान है? और न ही सारे पहरेदार नमक हराम होते हैं। अरे, जिन्होंने राजमहल के बाहर की धूप शायद ही देखी हो, वे अपना सारा ऐश्वर्य विलासी जीवन छोड़ किसी गुसाई साधु के लिए इतना साहस कर पाएंगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजहंस मोतियों को छोड़कर कुछ खाते भी हैं कभी, फिर उन्हें भूखा ही क्यों न रहना पड़े? वेश्याएं जो करती हैं वह उनके लिए केवल व्यवसाय है। उनका सारा ध्यान तो अपनी आमदनी पर होता है, मनुष्य पर नहीं। स्त्री चरितम में एक बात तो इतनी विभत्स लिखी गई है कि पाठक ही शर्मा जाए। इससे तो यही साबित होता है कि लेखक कितना नीच और असभ्य है। उच्च स्तर के साहित्य के लिए श्रृंगार, हास्य तथा विरह रस प्रधान अवश्य माने जाते हैं, परंतु ग्रंथकर्ताओं के लिए यह भी जरूरी है कि वे सत्य का ध्यान रखें। पृष्ठ संख्या 41। मंजुघोषा सार्वभौम राजा की चतुर सर्वगुण संपन्न लड़की, कुलशील योग्यता की परवाह न करते हुए पिता से छिपकर जिस राजपुत्र के साथ वह भाग गई, क्या वह यथार्थ लगता है? क्या उसके मन में अपने पिता के प्रति कुछ न आया होगा? राजसी वैभव छोड़कर एकाएक वह कैसे जा सकती थी? कितनी सच है यह बात, ग्रंथकर्ता तो इसी सदी का है, किंतु मेरी पीढ़ी ने वसंत माधव नामक हवाई जहाज के बारे में कभी सुना तक नहीं है, जिसमें बैठकर मंजू घोषा चली गई थी। अंग्रेजों ने हवाई जहाज बनाए, परंतु हवाई जहाज का ऐसा उपयोग करने की कल्पना भी उनके मन में न आई होगी। मुक्तमाला भी बड़े सरदार की बेटी थी, उसका पति कारागृह में था। उससे मिलने के लिए प्रयास करते करते वह भद्राक्ष नाम के दुष्ट के हाथों में आ जाती है। वह मुक्तमाला को कैद कर देता है। कथा कहती है कि उसने अपना स्त्री धर्म नहीं छोड़ा, परंतु निर्मल मनुष्य की जगह पर किसी कामांध व्याघ्र को गौ मिल जाए तो क्या वह उसे मारे बिना रहेगा? कपटी पुरुषों के आगे पतिव्रता धर्म कहाँ तक रहेगा? कल्पना विलास ठीक है, जैसे कथाकार कथा कहते समय कहता है कि बैगन निषिद्ध है, तथा कथा समाप्ति के बाद खुद वह घर जाकर बैगन की सब्जी चाव से खाता है। दुष्ट पुरुषों के हाथ से स्त्री के छूटने का एक ही रास्ता है, प्राण त्याग। तुम्हारी काम वासना पूर्ण होते ही तुम जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हो और उस गर्भवती नारी के लिए दो ही रास्ते बचते हैं, देह त्याग नहीं तो बाल हत्या। पृष्ठ संख्या 42। तुम्हारे कुकर्मों का साक्षी तो नहीं होता, इसलिए दंड नारी को मिलता है। यदि पुरुष को भी उससे कड़ा दंड दिया जाए तो वह कभी किसी नारी को लांछित नहीं करेगा। तुमसे तो सांप अच्छा है जिसके दंश से मृत्यु तत्काल मिलती है। तुम तो नारी का जीवन भर शोषण करते हो। जिस प्रकार नारी तुम्हारे लिए दर्द सहती है, उसी प्रकार क्या तुम दर्द सहोगे उसके लिए? नारी का प्रेम सागर की तरह गहरा होता है, जिसे वह चाहती है उसे कभी भूलती नहीं। लेकिन तुम भौरे के समान यहाँ से वहाँ सूंघते रहते हो। अपनी दुर्गुणों को पहले पहचानना सीखो तुम। जिस स्त्री को तुम नरक द्वार कहते हो, वह असल में कौन है? तुम्हें किसने जन्म दिया है? 9 महीने तक तुम्हारा बोझ किसने उठाया? आँखों का दिया और हाथों का झूला बनाकर तुम्हें किसने पाला? वह तुम्हारी माँ है, भैया कहकर पुकारने वाली तुम्हारी बहन है। यह भी तो स्त्री है, उसे ही तुम लोग दुर्गुणों की खान, सुख पर पड़ी कुल्हाड़ी कहते हो। क्या कहा जाए तुम्हें? मातृद्रोही, मातृनिंदक। हमारी संस्कृति माता पिता गुरु को ईश्वर का स्थान देती है। पुंडलिक ने अपने माता पिता की ऐसी सेवा की कि स्वयं भगवान भी 28 युगों तक ईंट पर खड़े रहकर पुंडलिक की प्रतीक्षा करनी पड़ी। अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान कहाँ रहता है, क्या खाता है? बीरबल ने कहा था कि जिसका ईमान कायम है उसके पास भगवान रहता है। वह दुनिया के अपराध सहकर दुनिया को क्षमा करता है। स्त्री में यही क्षमाशीलता है, वह पृथ्वी के समान है। वह सभी अपराधियों को धारण करती है धरती के समान। फिर वह नरक द्वार कैसे हो सकती है? यदि तुम्हारी माँ को कोई दोषी कहे तो क्या तुम चुपचाप मान जाओगे? पृष्ठ संख्या 43। स्वर्ग तो किसी ने देखा ही नहीं है, फिर स्त्री को स्वर्ग का रोड़ा कहने का क्या अर्थ? रंगरलिया उड़ाते समय स्त्री के साथ तुम्हें स्वार्गिक सुख मिलता है, और नौबत आती है तो स्त्री को दोषी ठहराते हो। धन्य हो तुम। इतने कुटिल नीतिज्ञ हो कि स्वयं भ्रमर के समान चंचल होते हुए भी तुम कहते हो कि स्त्रियस्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। विधि लिखित का दोष स्त्री को क्यों दिया जाता है? नारी जब किसी पर सर्वस्व न्योछावर करती है तो दूसरे की ओर देखती भी नहीं, लेकिन तुम हो कि शरीर में मदन का संचार होते ही कुरूप कुब्जा तुम्हें रंभा महसूस होती है। कहा जाता है कि स्त्री के कारण अनर्थ हुए हैं, इसका सत्य कारण कभी जानना चाहा? कैकेयी दोषी कहलाती है, किंतु दशरथ अपने वचन से भरत को राजा बनाने के लिए कैकेयी से विवाह के क्षण से बाध्य था, और रघुवंशी का यह वचन निभाने के लिए ही कैकेयी को क्रोधित होना पड़ा। यह बात कितने लोग जानते हैं? सीता के कारण राम रावण युद्ध हुआ। वनवास के अभाव में जीने के लिए सीता को राम ने ही बाध्य किया था ना? अब दोष किसे दे? एक पति अपनी पत्नी को धूत में एक किसी वस्तु समझकर हार जाए, क्या यह नारी का अपमान नहीं? उसके लिए जो महाभारत हुआ उसका दोषी द्रौपदी को क्यों कहा जाता है? यदि इस दुनिया में स्त्री ही न रहती तो सुंदरता किसे कहते तुम? स्त्री शक्ति है, वह अर्धांगिनी है। यदि आधा शरीर पीड़ित हो तो बाकी आधा शरीर काम कर सकता है। स्त्री ऐसी शक्ति है जो इस सारे संयम को जला सकती है। जहाँ वह रहती है वहीं लक्ष्मी का निवास रहता है, इसीलिए तो उसे लक्ष्मी कहा जाता है। तुम ऐसा सोचोगे तो स्त्री तुम्हारे लिए अमृत ही बन जाएगी। वह गौ है, इसलिए उसका संरक्षण तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने मन को विवेक के खंभों से बांध दो, सदाचार से रहो, फिर देखना हर घर आनंद का महल हो जाएगा और निष्कलंक पातिव्रत की पताका हर जगह लहराएगी। पृष्ठ संख्या 44। स्त्री अपने सदाचार के बल पर अग्नि के समान पवित्र अंतर्वाह सूची रहकर पुरुषों को नीचा दिखा सकती है, अपने शक्ति नाम को रोशन कर सकती है। ऐसी सदाचारी पतिव्रता दोनों कुलों का भूषण रहने वाली तेजस्विनी स्त्री की सुकीर्ति की ध्वजा सदा ऊंची रहे और बाल बच्चों सहित उन्हें वैभव का पूरा आनंद प्राप्त हो, यही उस दयानिधि ईश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना है।